पंचदशी के कुटस्थदीप प्रकरण का 17 श्लोक से करते हैं। असंग एव कूटस्थ सर्वदा नास्य कश्चन भवत्यतिशयस्तेन मनस्येवं विचार्यताम्। असंग एव कूटस्थ सर्वदा नाश्य कश्चन भवत्यतिशयस्तेन मनस्येवं विचार्यताम्। वह कुटस्थ कैसा है, कुटस्थ के लक्षण को यहां बदला रहे हैं। असंग एव लगा दिया, जो त्वम पदार्थ का शोधित अर्थ है, इसी को बोलते हैं त्वम पदार्थ का लक्ष्यार्थ। प्रत्येक शब्द का वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ दो होता है। वाच्यार्थ बोलते हैं जिस शब्द को सुनने से जिस पदार्थ की नियमतः प्रतीति हो उसका नाम है वाच्यार्थ। यस्य शब्द श्रूयमाणे नियमेन अर्थोपपत्ति स वाच्यार्थ। जिस शब्द यस्य शब्दोच्चारणेन नियमेन यस्यार्थस्य उपस्थितिः, जिस शब्द को उच्चारण करने के बाद जिस अर्थ की यस्यार्थस्य उपस्थिति नियम से हो स्वभाव से हो उसका नाम है वाच्यार्थ। जैसे हमने कहा कि जो है ना पांच हाथी समुद्र किनारे आए हुए हैं, तो पांच हाथी का अर्थ क्या हो गया आपका, जो बड़े बड़े काले काले पहाड़ के समान पिलर के समान चार पैर हैं, रस्सी के समान पूंछ है, सूपा के समान कान है। और यदि हमने कहा फला बच्चे के जेब में हमने पांच हाथी देखा, हमने क्या कहा फलाने बच्चे के जो है ना जेब में पॉकेट में पांच हाथी देखा, तो संभव है ये? तो लक्ष्यार्थ करेंगे कि पेपर में किसी कागज में पांच हाथियों के चित्र होंगे, फोटो होंगे, तस्वीर, ऐसा लक्ष्यार्थ करना पड़ेगा। क्योंकि छोटे से पॉकेट में पांच हाथी तो एक भी नहीं आ सकता, तो हाथी शब्द का लक्षणा करेंगे फोटो में तस्वीर में करेंगे, इसको बोलते लक्ष्यार्थ। ऐसे यहां पर त्वम पद का सीधे अर्थ है साढ़े तीन हाथ वाला जो शरीर चिदाभास जीवात्मा, यह आपका त्वम पद का हो गया वाच्यार्थ, और लक्ष्यार्थ हो गया कूटस्थ। लक्ष्यार्थ कूटस्थ इसी को बोलते शोधित अर्थ। ऐसे ही तत्पद है, तत्पद का वाच्यार्थ है ईश्वर, मायोपाधिक ईश्वर, उसी तत्पद का लक्ष्यार्थ हो गया ब्रह्मा, इसको ब्रह्म कहते हैं। तो यहां बता रहे कूटस्थ का स्वरूप कैसा, असंग एव, बिल्कुल असंग है, किसी भी देश से काल से वस्तु से अवस्था व्यवस्था से बिल्कुल संग नहीं करता, संग मतलब आसक्ति नहीं करता, असंग एव। अस्य न कश्चन अतिशय भवति, तेन मतलब इसी कारण से, मतलब असंगत्वेन, तेन का अर्थ है असंगत्वेन। असंग होने के कारण से अस्मल्लव कूटस्थस्य इस कूटस्थ का कश्चन अतिशय न भवती, कोई भी अतिशय नहीं होता। अतिशय बोलते वृद्धि ह्रास को, संसार के गुणों से अवस्था से व्यवस्था से कुटस्थ बढ़ता नहीं, आत्मा बढ़ती नहीं, और संसार की अव्यवस्था से ये आत्मा घटती नहीं, न्यूनता नहीं होता। अतिशय शब्द का अर्थ होता है घटना बढ़ना, हिंदी में अर्थ करो घटना बढ़ना। जैसे व्यवहारिक जगत में अच्छी व्यवस्था हो, धन धान्य हो, पद की प्राप्ति हो, तो जरा आदमी खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता, वृद्धि हो जाता, ऐसा आत्मा में नहीं। और धनादि के ह्रास से इसका जरा भी नाश भी नहीं होता, इसलिए कह दिया अतिशय से रहित है। मनस एवं विचार्यताम, ऐसा आप मन में विचार कीजिए, बार बार विचार करना है। कूटस्थस्य असंगत्वादिकम, या जो कूटस्थ है, आपके असली चेहरे का नाम कूटस्थ है, जो असली स्वरूप है ना, इसका नाम कूटस्थ है। और नकली स्वरूप तो जानते हैं आप लोग, जैसे व्यवहार में कोई आदमी वकालत करने अपने ऑफिस में गया तो काला कोट काला कपड़ा पहन लेगा, टाई लगा लेगा, तो असली नहीं, नकली रूप है, वह एक औपाधिक रूप है। क्योंकि उसे कोर्ट में जाकर अपनी बात रखनी है मुलजिम की, तो जरा अपना काला कोट कपड़ा टाई लगा लिया, तो यह जो वकालत के पोशाक है औपाधिक हो गए। वही आदमी दीपावली में किसी घर में पूजा कराने जाए तो धोती कुर्ता अपना चंदन भस्मी लगा लेगा, तो वह औपाधिक रूप हो गया पूजा का। और अपने घर में सामान्य रूप से, ऐसे यहां पर है। तो असली जैसे आपका अलग होता है ना स्वरूप, ऐसे यहां पर आपका असली रूप है कूटस्थ, आत्मा है आप, सच्चिदानंद है। और औपाधिक स्वरूप है कि आप शरीरी हैं, तत्तद उपाधि वाले हैं, देश काल अवस्था वाली औपाधिक सब है। तो वही बता रहे कि कुटस्थ असंग है, असंगत्वादिकम। मृति जन्मादि लक्षणस्य व्यवहार जातस्य असत्वम च प्रतिपादितम्। आपके स्वरूप में न जन्म है न मौत। सीधी बात, जब जन्म ही नहीं तो मौत कहां से? जो जन्मेगा सो जरूर मरेगा, और आत्मा तो जन्मती ही नहीं तो मरेगी कहां से? सीधी बात, आत्मा का जन्म ही नहीं होता है तो मरेगी भी नहीं। शरीर का जन्म होता, जन्म शब्द की परिभाषा आचार्य ने ऐसा किया है, कार्य कर्णादि संघ के साथ चिदात्मा के संयोग का नाम है जन्म। जो कार्य कारण है, कार्य मतलब शरीर, कारण मतलब सूक्ष्म शरीर इंद्रियां, तो कार्य करण संघात के साथ चिदाभास के संयोग का नाम जन्म, और वियोग का नाम मौत, ऐसा शंकर भाष्य समर्थ किया। बहुत संक्षिप्त अच्छा अर्थ है, कार्य हो गया शरीर, कारण हो गए इंद्रियां, दोनों का जो संघात समुदाय, इनके साथ जो चिदाभास का संयोग हुआ इसका नाम हो गया जन्म, और वियोग हो गया तो बोलते हैं मौत। तो कहां कुछ भी नहीं हुआ, संयोग वियोग का नाम है जन्म मौत। परंतु कुटस्थ आत्मा का संयोग वियोग नहीं होता, वो तो एक रस है, अखंडिक रस है। हाँ बिल्कुल, बस है, हाँ शरीर मिलने से ही होगा। और ये इसीलिए हो रहा था कि आप अपने स्वरूप को पहचाने। परमात्मा तो लीला किया, लोकवत्तु लीला कैवल्यम, लीला खेल, पर हम लोग खेल खेल में से उलझ गए कि अपने आप को भूल गए, और भूलने के बाद अपने को संसारी मान लिए, गुजराती मान लिए, बंगाली मान लिए, पंजाबी मान लिए, फिर हिंदू मान लिए, मुसलमान मान लिए, फिर ब्राह्मणादि अपने वर्ग में अपने को सीमित कर दिया। इसके बाद परिवार की उपाधि आ गई, फिर समाज की आ गई, फिर जो है ना पद की उपाधि, इसके बाद अपने संबंध की उपाधि, इतनी उपाधियां। इन उपाधियों के साथ हमने संग कर लिया, आसक्ति कर लिया, इसीलिए सुखी दुखी हो रहे। हाँ, तो ये तो सब खेल है। आप भी खेल को खेल समझें तो कोई क्षति नहीं, पर हम लोग खेल को बिल्कुल वास्तविक मान लेते, इसलिए सुखी दुखी होते। इतना ही अंतर वही बता रहे कि मृति जन्मादि लक्षणस्य व्यवहार, यहां जात का अर्थ समूह, जात बोलते समूह, व्यवहार जात मतलब व्यवहार समूह का, असत्वम बिल्कुल असत है, यह बात प्रतिपादितम वर्णन कर दिया, बता दिया। अतो मोक्षु इमम अर्थम, मोक्षु को, मोक्षु मतलब कि जो संसार से मुक्त होना चाहता है, एक होता है जिजीविषु, जो संसार में मात्र जीने की इच्छा करता है उसको बोलते जिजीविषु, दूसरा होता मोक्षु हो। फिर आप लोग कैसे मोक्षु हैं, आप क्या चाहते कि हमारा मोक्ष हो? मोक्ष मतलब कि मुचली मोचने धातु है, मुचली मोचने से मोक्ष शब्द बनता है, मोक्ष मुचली से मोक्ष बनता है। पुगंद लघु पदस सूत्र है, उससे उपदा वृद्धि हो जाएगी, मुख को तो बन गया उसका मोच, आगे कुत्व आदि होकर के मोक्ष बनेगा, व्याकरण की प्रक्रिया। तो मोक्ष का मतलब कि अशेष विशेष समस्याओं का समाधान, छुटकारा पाना, जो भी समस्याएं हैं हमारे जीवन की, उन समस्याओं से छुटकारा पाते ही आप स्वरूप में स्थित हो जाते। जिस प्रकार से रोगी है तो रोगी हजार है, पर हजारों रोगियों की एक रोग होने पर भी एक दवा काम नहीं करती। हजार रोगी सबको एक ही रोग है, पर एक रोग में एक दवा नहीं काम करती, किसी को कोई दवा, किसी को कोई दवा काम करती। ऐसे यहां पर भवरोग है, इस भवरोग को दूर करने के लिए अलग अलग दवाई, कोई भक्ति का, कोई उपासना का, कोई वेदांत का, कोई सांख्य योग का, निष्काम कर्म का, परोपकार का, ये सारी समझो की दवाइयां हैं। इन दवाइयों से सिर्फ आपके रोग का छुटकारा होता, आपका स्वभाव है स्वस्थ, जैसे रोग हटा आप अपने आप में स्वस्थ हैं। खाली रोग की निवृत्ति दवाइयां करती हैं, औषध पान, औषध सेवन सिर्फ रोग की निवृत्ति का उपाय है। ऐसे यहां पर भवरोग है, इस भवरोग की दवाइयां अलग अलग, कोई निष्काम कर्म, कोई उपासना, कोई भक्ति, कोई परोपकार, कोई समाज सेवा, है ना, ये सारी समझो दवाइयां। ये आपके चित्त में जो अविद्या है इसको दूर कर देगी, दूर करते आपका स्वभाव स्वस्थ है, स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। वही बता रहे कि मोक्षों को इस अर्थ को सर्वदा विचार करना चाहिए, सर्वदा मतलब सभी काल में, ऐसा नहीं कि सुबह कर लिया छुट्टी, हम लोग यही गड़बड़ कर देते ना, सुबह प्रातः काल श्रवण कर लिया, फिर बाद में यत पठितम तत गुरवे निवेदितम, गुरवे मतलब यहां प्रेमपुरी में सो ऐसी बात नहीं, निवेदन तो करना परंतु उसको विचार करना बार बार, हमने क्या श्रवण किया, इसका तात्पर्य क्या है, भाव क्या है। लिखा कि विचार्यताम, विचार कीजिए, यह अभिप्राय है ग्रंथकार का। कूटस्थस्य जन्मादि अतिशयाभाव कुतो अवगम्यते इति आशंक्य श्रुतिवाक्यादि श्रुतिवाक्यात् इति अभिप्रेत्य आत्मोपनिषदि तदवाक्यम पठति। आत्मोपनिषद के वाक्य को बता रहे कि कुटस्थ आत्मा कैसी है, तो जन्मादि अतिशय का भाव है, उसमें जन्मादि कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ है ही नहीं। यह बात आपने कैसे समझी, ऐसा किसी ने शंका किया, तब प्रमाण दे रहे, श्रुति वाक्य का प्रमाण दे रहे, या आत्मोपनिषद की श्रुति है, उसी वाक्य को यहां पर पढ़ के बता रहे हैं कि आपका कूटस्थ स्वरूप कैसा है। वैदिक सिद्धांत में हर बात को प्रमाण देकर सिद्ध करते, भई आपने बात कही है तो इस बात का मूल क्या, प्रमाण क्या, प्रूफ क्या है। यदि किसी ने कहा कि मैं कह रहा हूं, भाई आप कह रहे ऐसी बात, वो कहेगा कि ऐसी बात। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा संसार सत्य है, दूसरे ने कहा नहीं बिल्कुल मिथ्या है, तीसरे ने कहा नहीं भाई थोड़ा सच्चा थोड़ा झूठा दोनों मान लो, तो बात नहीं बनेगी ना। प्रमाण क्या है, तो हर बात को श्रुति से वेद से सिद्ध करते हैं, तो श्रुति वाक्य को यहां पढ़ रहे हैं। न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मोक्षो न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थता। न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मोक्षोर्न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थता। न निरोधो, निरोध मतलब कि इस आत्मा की मौत भी नहीं, बाद भी नहीं, न चोत्पत्ति उत्पत्ति भी नहीं, न कोई बद्ध है न कोई साधक है, न कोई मोक्षु है न कोई मुक्त है। ये वास्तविक बात है। हम कल्पना से कहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत सुखी हैं, हम बद्ध हैं, हम मुक्त हैं, सारी बातें काल्पनिक हैं। इसको समझने के लिए कंठ चामिकर न्याय बताते हैं महापुरुष लोग। एक आदमी चामिकर बोलते मणि को, चामिकर अपने कंठ में सुंदर सोने की मणि धारण कर रखी, माला, उसमें हीरे हैं, कई चीजें लगी हैं। अब वो आदमी नहाने गंगा किनारे गया, माघ का महीना, ठंडी हवा चल रही, सारे कपड़े निकाले जल्दी जल्दी और भगवान का नाम लेकर पांच गोता लगाया, तुरंत सारे कपड़े पहन लिए, दो चार पांच इतने जल्दी जल्दी, और चादर ओढ़कर चल पड़ा। जैसे कमरे में आया, याद आया, अरे भाई हमारी उमड़ी कहां गई, माला कहां गई, हाथ लगाया तो कपड़े से ढका हुआ, खूब लगाया पता नहीं चल रहा। अब चिल्लाया कि देखो हमारी मणि किसने चुरा ली, कहां खो गई, किसने मतलब छुपा ली। खूब बेचारा चिल्ला रहा, खूब ढूंढ रहा, थक गया। अब थकने के बाद जैसे सोने लगा, कपड़ा निकालने लगा, इतने में हाथ में मणि आ गया, बोले चीखा कि मणि मिल गई मिल गई। अब बताओ मणि मिल गई कि पहले से मिली मिलाई थी? मिली मिलाई थी वो तो, वो मणि न पहले कभी खोई न मिली, वो तो पहले से मौजूद है। पर हमें अज्ञान से भ्रांति एक हो गई कि हमारी मणि खो गई, किसी ने छिपा लिया, किसी ने चुरा लिया, ये भ्रांति हो गई। अब इस भ्रांति को मिटाने के लिए खूब प्रयास किया, खूब ढूंढा बेचारे ने। जब ढूंढते ढूंढते थक गया तो थक कर ऐसे सोया, और सोने के पहले कपड़ा निकाला तो चीखा की मणि मिल गई। वही हालत हमारी है। आप बिल्कुल शुद्ध बुद्ध मुक्त हैं, सच्चिदानंद है, ना बद्ध है ना मुक्षु है, कुछ भी नहीं। पर अज्ञान से लगता है कि हाय मैं तो संसारी, मैं तो जन्मने वाला मरने वाला, बड़ा दुखी हूं। भगवान ने हमें बड़ा दुखी बनाया, कभी कभी होता ना आपको, भगवान ने कैसा दुखी बनाया, कितना गरीब बनाया, कैसा बनाया। और आप प्रारब्ध को कोसते हैं कि हमारा प्रारब्ध नसीब ठीक नहीं है, कह रहे कि सारी हमारी कल्पना है। इसी बात को लिखा, न कोई उत्पत्त होता है न मरता है, न बद्ध है न साधक है, न मुक्षु है न मुक्त है, ये वास्तविक बात है। अज्ञान से आपको भ्रांति हो गई। अब अज्ञान से भ्रांति हो गई तो आपको बार बार विचार करना पड़ता है, और विचार करने से मात्र भ्रांति की निवृत्ति होती है। रस्सी में कभी भी सांप उत्पन्न हुआ नहीं, फिर भी आप चीखते हैं कि डंडा लाओ बैटरी लाओ कि सांप भाग न जा, जल्दी मारो, छिप जाएगा तो किसी को खा लेगा। जब बैटरी लाए टार्च लाए तो क्या देख रहे? कुछ भी नहीं। अब विचार करो सांप था? कभी नहीं। तीनों काल में सांप तो रस्सी में उत्पन्न हुआ ही नहीं। ऐसे ही न कोई उत्पन्न हुआ, न कोई किसी की मौत होती है, न कोई बद्ध है, न कोई मुक्त है, न साधक है, न बाधक है। ये सारी चीजें हमारी कल्पना है, और हम अपनी कल्पना में अपने आप जो है ना सुखी दुखी हो रहे हैं। वास्तविक बात बताए, इसका नाम अजातवाद है। आखिरी में अजातवाद आपके सामने रख रहे। सबसे बड़ी कंठ चामिकर न्याय, कंठ चामिकर न्याय बोलते। ननु तरही श्रुतिषु तत्र तत्र जीवेश्वरादि स्वरूप प्रतिपादनम किमर्थम इति आशंक्य अवांग मनस गोचरस्यात्मनो अबोधनाय इत्याह। तरही मल्ल तो फिर, तरी करता तो फिर, श्रुति सुश्रुतियों में पूर्व पक्षी ने कहा भाई जब कुछ है ही नहीं तो फिर आप बेमतलब का क्यों इतना साथ लिख रहे हो कि जो है ना ये जीव है, ईश्वर है, कुटर्थ है, ब्रह्म है, तो संसार, ये सब बात क्यों लिख रहे, क्यों पढ़ पढ़ा रहे जब कुछ है ही नहीं। न कोई बद्ध है न मुक्त है, न कोई उत्पन्न होता न कोई मरता है, न कोई साधक है न कोई बाधक है, जब कुछ है ही नहीं। तरही तो फिर श्रुति सुश्रुतियों में इतना प्रतिपादन क्यों किया गया? तत्र जीवेश्वरादि स्वरूप प्रतिपादनम किमर्थम, क्यों किया? शंका तो बिल्कुल सही है ना, शंका सही भाई, जब जो है कुछ है ही नहीं, अजातवाद है, तो फिर क्यों श्रुतियों में प्रतिपादन किया है कि ईश्वर है, जीव है, कुटस्थ है, ये सारी बातें क्यों बताया जब कुछ है ही नहीं? किमर्थम, तब कह रहे कि इसलिए बताया क्योंकि अवांग मनस गोचरस्य आत्मनो अबोधनायत्याह। जो तत्व है मन वाणी का विषय नहीं, हमारे मन और वाणी कई चीजें होती है जिसको हम वाणी से बोल नहीं सकते। चालक ने बात लिखी है बहुत काम की, कई बार इसका मैं चिंतन करता हूं। यत मनसा चिंतितम तत वचसा नैव प्रकाशयेत। छोटी छोटी बात कभी बहुत व्यवहार में काम आती। यत मनसा चिंतितम तत वचसा नैव प्रकाशयेत। नैव जो मन से चिंतन किया, जो बात आ गई, उसको बिना विचार किए वाणी से बोलना नहीं चाहिए, ये इसका भाव है। यत मनसा चिंतितम तत वचसा नैव प्रकाशयेत, वाणी से प्रकट नहीं कर देना, खुद विचार करना कि इसको बोलने से इसका परिणाम क्या होगा मुझ पर या समाज पर, परिवार पर और उन लोगों पर। भले सही बात है, जैसे मान लो एग्जाम्पल दिया, कोई आदमी जन्मांध है तो आप सीधा बोल देंगे अय अंधा इधर आओ, कितना बुरा लग जाएगा। बात तो सही है, बेचारा अंधा प्रारब्ध से है अपने नसीब से। यदि आपने बोल दिया ओ अंधे इधर आओ तो कितना दुख पीड़ा होगी बेचारे को। इसलिए क्या बोलना चाहिए, प्रज्ञा चक्षु दिव्य चक्षु पधारिये, आपका स्वागत है, कितना खुश होगा बेचारा। तो व्यवहार में कई बार हमारे मन में कई तरह की बातें आती हैं, स्वाभाविक है, तो उन बातों को प्रकाशित न करे, बोले नहीं, बल्कि विचार करके इसके बाद। तो वह जो तत्व है कैसा है, मन वाणी का विषय नहीं है। तो कई चीजें वाणी से बोलते हैं और कुछ बातों को समझने के बावजूद भी मन ही मन में रखते, मन से ही चिंतन करते, ऐसा भी हो सकता, ऐसा नहीं भी हो सकता है, ऐसा होता ना कई बार। तो कहते हैं वह तत्व कैसा, वाणी का विषय नहीं, मन का ही विषय नहीं, मन से भी चिंतन करके वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं। इसीलिए उस आत्मा को बताने के लिए श्रुति में जीव ईश्वर आदि की सारी बातें बताई गई है। इसको बोलते हैं वेदांत की प्रक्रिया से अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचयते। निष्प्रपंच आत्मा का प्रपंचन मतलब व्याख्यान विस्तार किया जाता है। अध्यारोप अनादि काल से हो गया है कि मैं संसारी हूं, मैं जन्मने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं, इस अध्यारोप का अपवाद करते हैं। जैसे भ्रांति से आपको यह अब एक नई भ्रांति है, पुराना दृष्टांत नहीं, नया दृष्टांत देना चाहिए। वो हाथ में आता ना क्या खिलौना, जिसको मोबाइल बोलते हैं आपको, जिसको बोलते स्मार्टफोन, इस बात को योग दर्शन में हजारों वर्ष पहले ही लिख दिया। ऋषियों की सभा हुई, पूछा कि बताओ अपने अपने विचार, इस आधुनिक आविष्कार से क्या लाभ क्या हानि। सब ने अपना अपना विचार रखा। जब पतंजलि जी के सामने आई कि भाई आप भी बताओ, एक सूत्र में अपनी बात रख दी, समाधौ अंतरायः व्यवहारे सिद्धयः। वहां व्युत्थान है, व्यवहार नहीं, समाधौ अंतराय व्युत्थाने सिद्धयः, सारी बात रख दी। व्युत्थान मतलब व्यवहारिक जगत में स्मार्टफोन व्यवहारिक संसाधन बहुत अच्छी चीज है, उपयोगी है, सार्थक है, परंतु यही आविष्कार चीजें आपके ध्यान समाधि आत्म साक्षात्कार के लिए अंतराय है, मतलब बाधक है, बाधा है। तो यह जो खिलौना आपके हाथ में होता, तो हमारी भ्रांति क्या, इसमें बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है, सारी दुनिया की जानकारी हासिल हो जाती है। एक भ्रांति हमारे मस्तिष्क की है कि सारी दुनिया की जानकारी ज्ञान नॉलेज इससे प्राप्त हो जाएगा। पर जो भी जानकारी होगी, सारी जानकारियां अनात्मा की है, सीधी बात अनात्मा की है ना भाई। जो भी जानकारी उससे मिलने वाली है, उन जानकारियों से आपके चित्त में शांति नहीं, बल्कि शांति खो जाएगी, छिन जाएगी। जानकारी होगी तो चिंतन होगा, भाई ऐसा कैसे हुआ, ऐसा भी हो सकता, वैसा भी हो सकता। तो सारी जानकारियां चित्त को अशांत कर देती है, परंतु हमारे मन मस्तिष्क में भ्रांति है। किसी स्मार्टफोन से बड़ा आनंद आता, बड़ा सुख मिलता है ना, बड़ा ज्ञान होता है, अच्छी चीज है, इसको बोले शोभनाध्यास है। अशोभन पर बुद्धि क्या हो गई, शोभनाध्यास, बहुत अच्छी चीज है, शोभनत्व का अध्यास हो गया, शोभनाध्यास। जैसे कि सीपी में शोभनाध्यास हो गया कि चांदी है तो सीपी, पर चांदी की बुद्धि, बड़ों को तो कम होता, अब लोगों को, बच्चों को ज्यादा होता, बहुत ज्यादा। बड़े तो समझदार है, मालूम है कुछ नहीं, समय बेकार होता, पर छोटे बच्चे उलझ जाते हैं। ऐसी अनात्मा में आत्मत्व का अध्यास है, इसी अध्यास को हटाने के लिए श्रुतियों में जीव ईश्वर का प्रतिपादन किया गया है। उच्चारण कर लें, अवांग मनस गम्यम तम श्रुतिर्बोधयितुं सदा जीवं मीशं जगद्वापि समाशित्य प्रबोधयेत्। अवांग मनस गम्यं तम श्रुतिर्बोधयितुं सदा जीवमीशं जगद्वापि समाशित्य प्रबोधयेत्। अवांग मनस गम्यम, जो मन बाणी का विषय नहीं, ऐसी जो हमारी आत्मा, तम उसी कुटस्थ को बोधयितुम श्रुति ही, श्रुति बतलाने के लिए। जीवम ईशम जगद्वापी, इस बात को बोलते हम लोग व्यवहार की भाषा में शाखाग्र चंद्र न्याय। किसी ने पूछा, बताओ द्वितीय का चांद कहां दिखाई दे रहा, तो आप क्या उत्तर देते कि पीपल के पेड़ के सबसे अगली शाखा को देखो, उस शाखा के अग्रभाग पर चंद्रमा दिखाई दे रहा। अब उसने कहा दिखाई नहीं पड़ रहा, तो क्या बोलते हैं कि और जाओ आगे सप्तर्षि मंडल को देखो, बोला हां दिखाई दे रहा, उसके आगे पीछे देखो। तो धीरे 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 वहां उसको पहुंचाते हैं, क्योंकि द्वितीय का चांद बहुत सूक्ष्म है। ऐसे यहां बता रहे कि जो मन वाणी का विषय नहीं, उसी को बताने के लिए श्रुति जीवात्मा को कर, देखो जीवात्मा क्या बताती, ईश्वर को समझाती, फिर जगत को समझाती। जैसे आप पहले क्या देखते हैं, शाखा करो, अगली टहनी को, फिर सप्तर्षि मंडल को, फिर उन्नति तारा को, बाद में चंद्रमा। ऐसे यहां पर उसी कुटस्थ को बतलाने के लिए श्रुतियों में जीवात्मा का लक्षण, परमात्मा का लक्षण, जगत का स्वरूप, इन सबको बतलाया जाता है, ताकि आप धीरे धीरे उस आत्मा को समझ लें, जो आपकी आत्मा। ननु तस्यैव एक रूपस्य श्रुति बोध्यत्वे श्रुतिषु विज्ञानम कुतो दृश्यते इत्याशंक्य। पूर्वपक्षी ने कहा, उसी एक तत्व को श्रुति जब बदलाती है, तो श्रुतियों में तरह तरह का विरोध क्यों दिखाई पड़ता है, कहीं जगत उत्पत्ति, कहीं जगत का प्रलय, कहीं जगत में अजातवाद, तो विरोधी बात हो गई ना। तो कहीं तो कहा कि तस्मात वा ए तस्मात आत्मनाकाश संभूत, और कहीं कि क्या कहा तदेक्षत भोष्याम प्रजा ये, कहीं कहा तत्तेजो असिजत। तो तरह तरह की विरोधी बातें, कहीं बोल दिया कुछ संसार उत्पन्न हुआ ही नहीं, तब बता रहे कि न तत्व विज्ञान मस्ति, तत्व में कोई भी विरोध नहीं, विज्ञान बोलते विरोध, कोई विरोध नहीं है, न तत्व विज्ञान मस्ति विरोध नहीं है, अपितु तद बोधन प्रकारे, उसके बोधन मतलब बदलाने के प्रकार में विरोध है, तदपि बोध्य पुरुष चित्त वैषम्य अनुसारेण, वह भी आपके चित्त के विषमता के अनुसार से वहां पर विरोध है, वास्तविक विरोध वह भी नहीं है, विषमता है इसलिए विरोध है। इस बात को सुश्वराचार्य जी ने बड़े जो है ना तार्किक ढंग से बात को रखी है, मतलब प्रक्रिया में भी जो विरोध है वह आपके चित्त के विषमता को लेकर। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आया, बोला मुझे बताओ विद्युत किसे कहते हैं, क्या पूछा, विद्युत किसे कहते हैं, आपके पास केवल एक लाइट जल रही, तो आप बोलेंगे देखो बच्चा जिससे रोशनी आ रही ना उसी का नाम विद्युत, वो पकड़ लिया जिससे रोशनी आती उसका नाम विद्युत। अब एक दूसरे दिन दूसरा बच्चा आया, बोला बताओ दादाजी बिजली किसे कहते हैं, उस समय टेप चल रहा था टेप रिकॉर्डर, तो दादाजी ने कहा देख बेटा जिसे आवाज आ रही ना इसी का नाम विद्युत है, विद्युत न हो तो आवाज आ नहीं सकती, वो पकड़ लिया आवाज आने वाले का नाम विद्युत। अब तीसरे दिन तीसरा कोई बालक आया, उस समय टेप रिकॉर्ड भी नहीं, बिजली भी नहीं जल रही, पंखा चल रहा था, तो क्या बोला कि भाई जिससे ये पंखा चल रहा हवा आ रही इसका नाम विद्युत, वो पकड़ लिया। अब तीनों एक साथ बैठे तो एक ने कहा देख हमारे दादा झूठ नहीं बोल सकते, जिससे रोशनी आती उसका नाम विद्युत, दूसरे ने कहा तेरा दिमाग खराब, अरे तेरे दादा से हमारे दादा बहुत बड़े हैं बूढ़े हैं, उन्होंने बहुत पढ़ाई पढ़ी डिग्री हासिल की, उन्होंने क्या बताया जिससे हवा आती उसका नाम विद्युत। तीसरे ने कहा कि तुम दोनों अज्ञानी ना समझ, अरे जिससे आवाज आती उसका नाम विद्युत है। तो अब विचार करो विरोध तो प्रक्रिया में है, वो भी आपको समझाने के लिए तीन प्रक्रिया बताए, पर विद्युत एक, चाहे हवा आए चाहे रोशनी आए चाहे आवाज आए विद्युत एक है। ऐसे यहां बोल रहे कि प्रक्रिया में भले विरोध है परंतु वह तत्व एक ही है। या भवेत पुंसाम व्युत्पत्ति प्रत्यगात्मनि सा सैव प्रक्रियेह स्यात् साध्वी इत्याचार्य भाषितम्। या भवेत् पुंसाम् व्युत्पत्ति प्रत्यगात्मनि सा सैव प्रक्रियेह स्यात् साध्वीत्याचार्य भाषितम्। इस श्लोक को कंठ कर लेना, बहुत काम आएगा, हर जगह काम आएगा, प्रत्येक जगह काम आएगा, समाज में व्यवहार में अध्यात्म में। इस श्लोक का अर्थ है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा जिस साधन के द्वारा आपको भगवत साक्षात्कार हो वही साधन वही प्रक्रिया वही तौर तरीका आपके लिए महान है, प्रमाणिक है, उत्तम है। इसका अर्थ है या भवेत पुंसम, जिस प्रक्रिया के द्वारा मनुष्यों को प्रत्यगात्मा में विपत्ति मतलब बोध हो, ज्ञान हो जाए, सा सैव वही प्रक्रिया अच्छी साध्वी बोलते अच्छी है, बढ़िया है, प्रमाणिक है। इसीलिए विद्वान को प्रक्रिया में उलझना नहीं चाहिए। बस जिस प्रक्रिया किसी को देखो भक्ति से भगवान का साक्षात्कार, किसी को जो है ना उपासना से, किसी को निष्काम कर्म से, किसी को परोपकार से, किसी को वेदांत विचार से, किसी को सांख्य योग से, किसी को कर्म योग से। अब अर्जुन को तो कर्म योग से ही साक्षात्कार हो गया। तो सारी प्रक्रिया अपनी जगह अच्छी है, समीचीन है, प्रमाणिक है। इसलिए विद्वान को प्रक्रिया में दुराग्रह नहीं करना चाहिए। शेष कल सुनेंगे, आज दीपावली का पावन पर्व है। दीपावली के पावन पर्व में प्रत्येक प्राणी के अंदर जो चित ज्योति आत्मा का जो स्वयं प्रकाश है, वही स्वयं प्रकाश जो आप प्रत्येक दिन 7:30 से समझो रात्रि तक श्रवण करते हैं, तो स्वयं प्रकाश आत्मा की जो ज्योति है वह जगमगाए और हमारे घर का, परिवार का, समाज का सारा अंधेरा, कौन सा अंधेरा, भूत भौतिक अंधेरा, तो आप दीपक से जला के दूर कर सकते हैं, बहुत संसाधन है। परंतु जो हमारे अंतःकरण में जो हजारों काल से अज्ञान अंधकार है, परिवार में, समाज में जो अज्ञान अंधकार है, उस समाज में क्या है, द्वैत बुद्धि। जो समाज में, परिवार में जो द्वैत बुद्धि का ज्ञान अंधकार है कि मैं यह हूं वह है, इस द्वैत बुद्धि रूपी अंधकार वेदांत के दिव्य ज्योति के द्वारा वह नष्ट हो जाए, तो घर घर, परिवार में, समाज में सर्वत्र उजाला होगा, प्रकाश होगा, हमारा जीवन परम आनंद उल्लास को प्राप्त होगा। यही मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि सबका हृदय आत्मज्ञान से झंकृत हो। ओम शांति शांति शांति। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।